તારીખ 21-8-1994 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 104.
શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, 7મા અધિકાર, જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા સ્વરૂપ હૈ, ઉસમેં ઉભયાભાષી, ઉભયાભાષી માને નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર દોનો મેં ભૂલે હુએ હૈ, ઉસકો ધર્મ કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી. નિશ્ચય વ્યવહાર કા વિષય ચલતા હૈ કે અભેદ આત્મા હૈ, વો આત્મા કા નિશ્ચય સ્વરૂપ હૈ, ઉસમેં ગુણ ભેદ આદિ હૈ, યે આત્મા કા વ્યવહાર નિશ્ચય સ્વરૂપ હૈ. તો નિશ્ચય સે અભેદ આત્મા હી ઉપાદેય હૈ, ઉસકા જો ભેદ હૈ વો તો સિર્ફ જાનને કે લિયે હૈ, પહેચાન કરને કે લિયે હૈ, ઇસસે જ્યાદા ઇસકા કોઈ ઉપયોગ નહીં હૈ. તો ઇસકો મુખ્ય કભી નહીં કરના. તથા પરદ્રવ્ય કા નિમિત્ત મિટાને કી અપેક્ષા સે વ્રત શીલ સંયમ આદિ કો મોક્ષ માર્ગ કહા થા, સો ઇન્હી કો મોક્ષ માર્ગ નહીં માન લેના. પરદ્રવ્ય કા નિમિત્ત મિટાને કી અપેક્ષા સે, પરદ્રવ્ય કે પ્રતિ પરિણામ કા અભાવ હો જાતા હૈ, તો ઓ પરિણામ કા નિમિત્તભૂત પદાર્થો કી પ્રવૃત્તિ કા ભી અભાવ હો જાતા હૈ, નિમિત્ત મિટ જાતા હૈ, સ્વતઃ હી મિટ જાતા હૈ. ઓર બહાર મેં વ્રતશીલ સંયમ આદિ કે શુભભાવ રૂપ, શુભોપયોગ રૂપ પરિણામ હોતે હૈ, ઉસી કો ભી વ્યવહાર સે મોક્ષ માર્ગ કહા થા, પરંતુ વાસ્તવ મેં વો મોક્ષ માર્ગ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉસકો મોક્ષ માર્ગ નહીં માનના ચાહિયે. क्योंकि परदेव का ग्रहण त्याग आत्मा को हो तो आत्मा परद्रव्य का करता हरता हो जाए. देखो यहाँ भूल पड़ती है, परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा कर सकता नहीं, न ग्रहण कर सकता है, न ग्रहण करने का कर्ता हो सकता है, न निमित्त मिटाने का हरता हो सकता है, नाश करना रहा हो सकता है. વ્રતશીલ સંયમ મેં તો એસા હી પરિણામ હોતા હૈ, ઓર એસી પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ કે જૈસે પરદ્રવ્ય કા ત્યાગ કર દિયા, તો વો તો કહેને માત્ર હૈ, વાસ્તવ મેં સ્વતઃ વસ્તુ સ્થિતિ એસી બનતી હૈ. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ તો કોઈ અલગ જુદી વસ્તુ હૈ, કે વ્યવહાર કે પરિણામ હૈ, ઉસકો મોક્ષ માર્ગ માનના ચાહિયે નહીં. ઉસકો મોક્ષ માર્ગ માનને સે ગ્રહણ ત્યાગ કા કરતા હરતા માન્યતા મેં હોઈ જાયગા,
હોઈ જાયગા.
ઓર યે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ હૈ, બુદ્ધિપૂર્વક ઉસકા કરતા હો નરતા માનના હો ગ્રહિત મિથ્યાત્વ હૈ.
હમારે બોલ ટાઈપ મેં લિયા હૈ ના, જો પરદ્રવ્ય બિના ગ્રહણ ત્યાગ માને હોર તો આત્મા કો કરતા હરતા થઈ જાય.
પરદ્રવ્ય કા ગ્રહણ ત્યાગ આત્મા કો હો તો આત્મા પરદ્રવ્ય કા કરતા હરતા તો જાય. એ સમયસાર કા કરતા કર્મ અધિકાર કા વિષય આ ગયા. ઉસમે વ્રતશીલ સંયમ કા પાલન હોવે ઉસમે કોઈ બાધા નહીં હૈ, લેકિન ઉસકો મોક્ષ માર્ગ નહીં માનના એક બાત. ઇસકો મોક્ષ માર્ગ તો નહીં માનના, દૂસરા ઉસમે જો ત્યાગ હોતા હૈ ઉસકા કરતાપણા ભી નહીં માનના. રાત કો બાત ચલી થી કે કોઈ દાન દેતે હૈં, સમર્પણ કરતે હૈં, તન મન ધન કા સમર્પણ કરતે હૈં દેવગુરુ શાસ્ત્ર મેં, તો ઉસકા કરતા બનતા હૈ, જો અપનાપણ રખતા હૈ તો કરતા બન જાતા હૈ. માં બાત લિયા થા કે ઉસમે અપનાપણ નહીં રખના, અહમ ભાવ નહીં કરના, અહમ ભાવ મેને અભિમાન નહીં કરના, વો બાત નહીં હૈ. મેરાપણા નહીં કરના, અપનત્વ નહીં કરના. અપનત્વ હોને સે કરતાપણા હોતા હૈ, કરતાપણા હોને સે અપનત્વ હોતા હૈ, દોનો અવિનાભાવી ભાવ હૈ. એક હોતા હૈ તો દૂસરા હોતા હી હૈ.
સંત
तो कर्ता तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है,
करना तो है,
लेकिन वो चालू रखना है,
नहीं रखना है।
तो
स्वामित्वपना
आता है तो उसको मंद करो, मुमुक्षु की भूमिका में उसको मंद करो। कल रात्रि के स्वाध्याय में वो बात चला था कि मुमुक्षुता वर्धमान होगी, अगर ये परिणाम अपनत्व का मंद होगा तो मुमुक्षुता वर्धमान होगी। मुमुक्षुता कैसे आगे बढ़े, मुमुक्षुता में वृद्धिगतपना कैसे होवे, कि अहम भाव में मंदपना होवे, अपनत्व में मंदपना होवे तो, और ऐसा मंदपना होने से मुमुक्षुता का वृद्धिगत स्थिति होगी, उतना ही नहीं उसमें निर्मलता आएगी, वही उसकी विकास है। मनुष्यपना का विकास क्या है कि उसमें निर्मलता आती है, वो तो दोनों बात लिया है पीछे, निर्मलता लिया, निर्मलता को हो, पात्रता को हो, मुमुक्षुता वर्धमान हुई ऐसा को हो, सब एक ही बात है। तो मुमुक्षुता आगे बढ़ेगी तो मुमुक्षुता की चरम सीमा को भी पार करके फिर ज्ञान दशा आएगी। लेकिन ऐसा मान ले कि हम तो मुमुक्षु है, हमको तो कर्तापना होता है क्योंकि हम तो मुमुक्षु है, अभी ज्ञानी नहीं हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको चालू रखना है। होता है लेकिन होवे ऐसा वैसा का ही होता रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। क्या
सुधार होना चाहिए
उसमें, कुछ न कुछ तो सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक कदम आगे बढ़ते 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 पहुंचोगे वहां का वहां रहेंगे तो पीछे चला जाने का बारी आएगी, फिर पीछे जाने का सवाल हो जाएगा।
निषेध
मैंने करता भाव अपनत्व का तो निषेध आना ही चाहिए। जहाँ अपनत्व होता है वो अपनत्व मिटाने का है, तो मंद करे तो मिटेगा, वरना मिटेगा कैसे। अपनत्व रहता है तो अहम भाव आएगा ही आएगा, मेरा पैसा दिया, मैंने दिया तो करता हो करके दिया, और अपनत्व रख करके दिया तो उसने दिया नहीं है, अहम भाव किया है, दिया तो नहीं है, अहम भाव
किया
है,
नुकसान किया बड़ा,
दे सकता नहीं, ले सकता नहीं, अहम भाव किया, हाँ कुछ भी, तन मन धन तीनों आ गया। तन मन धन का समर्पण की बात थी, तन मन धन का समर्पण करने का उपदेश क्यों है शास्त्र में, या ज्ञानी ने ऐसा उपदेश क्यों दिया। इसलिए दिया कि अपनत्व मिटाने के लिए दिया, तो तन मन धन का समर्पण किया ना, अपनत्व नहीं मिटाने का, तो उपदेश समझा ही नहीं उसने, उपदेश समझा नहीं है। जो उपदेश का मूल मुद्दा था वो तो छोड़ दिया, और मानते हैं कि हमने जैसा किया वैसा किया, जैसा कहा वैसा किया हमने, तो वो बात तो कहा ऐसा किया
नहीं
है।
मन में
इच्छा, मन में इच्छा होती है, ज्ञानी कहते हैं कि चलो हम ऐसा करेंगे, उनके कहने उनको करना चाहिए, गुरु है तो हमारा गुरु कहे ऐसा हमको करना चाहिए, वो कहते हैं वैसा कर लेते हैं। समर्पण समर्पण किया कि नहीं किया, बाहर से तो समर्पण किया ऐसा लगता है, लेकिन अपनत्व रखा तो समर्पण
नहीं किया।
वो समर्पण तो इसलिए करने का था, अपनत्व मिटाने के कारण से वो बात थी, अपनत्व मिटाने का हेतु से ये उपदेश दिया था, तो अपनत्व तो मिटाया नहीं, तो मूल मुद्दे की बात तो छोड़ दिया, तो कर्ता बनेगा, इसका कर्ता अर्ता ग्रहण त्याग का हो जाएगा। तो एक ही बात आती है ना, जो कल वहां बात आई थी श्रीमद जी के पत्र में, वही बात इधर आएगी, कर्ता अर्ता हो गया। परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है
नहीं।
कोई एक परमाणु भी जीव के परिणाम के अधीन, इच्छा के अधीन, भावना के अधीन कुछ है
नहीं।
इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक है, उन्हें छोड़कर वितरागी होता है, इसलिए निश्चय से वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा में क्या होता है कि आत्मा रागादिक भाव छोड़ करके वितराग होता है, कोई वितरागी भाव है वही मोक्ष मार्ग है, रागादिक भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम ही वितराग मार्ग है। राग मार्ग ऐसा कोई मोक्ष मार्ग का नाम है जैन दर्शन में तो नहीं है, राग मार्ग नहीं कहेंगे, वितराग मार्ग कहेंगे। वितरागों का मार्ग वितराग मार्ग कहलाया, और वितराग भाव रूप परिणमन होने से भी वितराग मार्ग कहलाया। बस किसी भी प्रकार का राग को मोक्ष मार्ग कह सकते नहीं है।
जैन मार्ग का वितराग मार्ग,
हाँ, जैन मार्ग कहो, मोक्ष मार्ग कहो, वितराग मार्ग कहो, सब एक ही बात है। और ये सच्चा मोक्ष मार्ग तो वही है, क्योंकि ये मुक्त भाव स्वरूप है। जितने जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में वहां मोक्ष मुक्त पड़ा है, अबंध परिणाम है, वो बंध परिणाम नहीं है, इसलिए ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। और राग भाव तो कहीं न कहीं कर्मों के उदय से या बाहर में बाह्य निमित्त के साथ संबंध प्रतिबंध करता है, संबंध करता है, वो प्रतिबंध है, इसलिए वो बंध भाव है, मुक्त भाव नहीं है बिल्कुल। जो बंध भाव होता है वो मुक्त भाव नहीं होता, जो मुक्त भाव होता है वो बंध भाव नहीं होता। ज्ञानी के परिणाम में भी दो प्रकार है, आंशिक बंध भाव अल्प है, मुक्त भाव भी मुख्य तौर से है, ऐसा परिणाम है साधक का। वितराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य का कारणपना है, क्या वितराग भावों के और व्रत आदि के कदाचित कार्य कारण पड़ा है, इसलिए व्रत आदि को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है। कदाचित मैंने क्या कि इससे नीचे दर्जे का वहां भाव होता नहीं है, तो कारण पड़ा छूट जाता है, तो वितराग भाव नहीं रहेगा। मुनि दशा में उद्देश्य का हार लिया, ऐसा परिणाम रहा तो मुनि दशा नहीं रहती। मुनि दशा में रात्रि को निंद्रा आ जाए तो मुनि दशा छूट जाए। तो उसलिए वहां जो व्यवहार के परिणाम है उसको कारणपना भी कहते हैं, निमित्तपना भी कहते हैं, फिर भी वो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। तो मोक्ष मार्ग के निमित्त का इसलिए हम उसको उपासना करते हैं कि निमित्त की उपासना करेंगे तो निश्चय मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। तो वो निमित्त निमित्त के स्थान में नहीं रहा, निमित्त उपादान के स्थान में आ गया, वो साधन नहीं रहा, साध्य हो गया। अभी बात आवे तेरे गड़बड़ करे से। वितराग भावों के और व्रतादि के कदाचित कार्य कारणपना है, हाँ देखो कारण तो है ना, वितराग भाव का कारण तो है कि नहीं, बताया कि नहीं बताया, इसलिए हम करते हैं, ऐसा करते करते हमको वितरागता हो जाएगी। इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है, यानी हम मोक्ष मार्ग नहीं मानते, लेकिन मोक्ष मार्ग का कारण कहा है नहीं, इसलिए वो कारण की उपासना करेंगे तो कार्य मिल जाएगा, वो तो ठीक है कि नहीं है। तो कारण तो साधन है, साधन की उपासना करने से वो खुद ही साध्य हो जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है, वो तो देखो वो बात है। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा ही श्रद्धान करना। पहले श्रद्धा को तो ठीक करो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है और
नहीं है,
नहीं है। शास्त्र ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, नव तत्व के श्रद्धान देवगुरु शास्त्र का, वितरागी देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग
नहीं है,
नहीं है। और व्रतादि का संयम आदि का पालन भी मोक्ष मार्ग
नहीं है,
नहीं है। ये पक्का करना पड़ेगा।
आत्मा का मनन चिंतन,
आत्मा का मनन चिंतन भी विकल्प भी मोक्ष मार्ग
नहीं है,
नहीं है। जितने भी विकल्प है वो मोक्ष मार्ग
नहीं है।
मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा निर्विकल्प रहा है, मोक्ष मार्ग है सो
निर्विकल्प रहा,
निर्विकल्प चाहे शुद्धोपयोग रूप हो तो भी निर्विकल्प है और परिणति रूप हो तो भी
निर्विकल्प
है। परिणति तो निर्विकल्प ही होती है, चाहे वो उल्टी हो चाहे सुल्टी हो। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नहीं का अंगीकार नहीं करना ऐसा ध्यान लेना। अब यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार नहीं पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। देखो क्या प्रश्न उठाया कि गुरु श्री गुरु भी उपदेश देते हैं तो व्यवहार पथ में आकर के व्यवहार मार्ग में आकर के देते हैं। जब उपदेश देते हैं तो व्यवहार मार्ग में वो आते हैं, दूसरों को उपदेश देना वो व्यवहार मार्ग है, वो तीर्थ प्रवृत्ति उसको कहते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं? तीर्थ प्रवृत्ति को हो, शासन की प्रवृत्ति को हो, तो दूसरों का कल्याण में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन कल्याण का प्रयोजन उससे सत्ता है। आप प्रश्न उठाया है, समाधान है। आप भी जब तक निश्चय नहीं से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें, इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नहीं कार्यकारी है। तो आगे वो कलश तो ले लिया, बात लिया ना कि वो हस्तावलंब है, हस्तावलंब की बात तो ले लिया ना आगे। अंदर से बराबर आप भी जब तक निश्चय नहीं से प्ररूपित वस्तु को नहीं न पहचाने, जो मुमुक्षु की बात लिया है, जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होवे, स्वरूप का भाव भाषण नहीं होवे, वहां तक व्यवहार मार्ग से मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञान लक्षण से भेद से ही वस्तु का निश्चय करें। वहां भेद का उपयोग है, किसी भी भूमिका में वो व्यवहार नहीं कार्यकारी नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो इस भूमिका में कार्यकारी है इसलिए वो इसका निश्चय हो जाए ऐसा भी होना चाहिए
नहीं।
निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवा सोय, आत्मसिद्धि शास्त्र। जो व्यवहार है वो लक्ष्य का विषय नहीं है, निश्चय है वो लक्ष्य का विषय है। व्यवहार होवे इसका कोई वादा नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य होवे तो वादा है पूरा। ये बात ख्याल में रखना है, निश्चय के लक्ष्य से व्यवहार सहज ही व्यवहार के स्थान में आ जाएगा, रह जाएगा। अगर निश्चय का लक्ष्य सही रहा, सच्चा रहा, तो व्यवहार के स्थान में व्यवहार के परिणाम सहज हो जाएगा। इस तरह से होना चाहिए, लेकिन एक कारण है, निमित्त है, इसलिए करे तो लक्ष्य का विषय बन जाता है, वो साध्य हो जाता है, साधन रहता नहीं है। ये सूक्ष्मता है इस विषय के, इसलिए गड़बड़ होती है। ऐसी बात नहीं है, तो साध्य हो गया, वो करते करते रखे तो उसका लक्ष्य हो गया, वो साध्य हो गया। तो लक्ष्य करने के लिए पहचान करना है, वो पहचान करने में ज्ञान लक्षण से ही पहचान होती है। तीन काल में बिना ज्ञान लक्षण ज्ञान स्वरूपी आत्मा की पहचान नहीं होती, निश्चय नहीं होता और लक्ष्य नहीं होता। पहचान होना, निश्चय होना और लक्ष्य होना, तीनों एक ही बात है, एक ही पर्याय में होता है। जब पहचान होती है तो निश्चय होता है, निश्चय होता है तो पहचान होती है, और उसी वक्त लक्ष्य बन जाता है आत्मस्वरूप का। वो लक्ष्य कभी छूटता नहीं है, साधक दशा में चालू ही रहता है। वहां से सम्यक सन्मुखता चालू हुई और साधक दशा में स्वरूप का लक्ष्य कभी छूटता नहीं है। तो पहचान नहीं हुए, निश्चय नहीं हुए, तब तक व्यवहार मार्ग से लिया ने के टोडर मजी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया, युक्ति मग्गे ना, युक्ति मार्ग से जानना, वो व्यवहार है। तच्चो अन्वेषण काले, अन्वेषण काल को हो, निश्चय करने का काल को हो, पहचान करने का काल हो, उस वक्त युक्ति मार्ग से यानी ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचान करना। मुमुक्षु को ये उसी दशा होती है, अनुभव के पहले ऐसी दशा होती है। परमात्मवचनी का
341
तुम्हारे हिंदी में तच अणेषण काले समयम बुझे ही ज्युति मग्गेना। आत्मा का निश्चय करना अन्वेषण काल में, खोज के काल में, अन्वेषण मैंने खोज के काल में, अंतर खोज के काल में युक्ति मार्ग से निश्चय करना कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, उत्पाद व्यय ध्रुव सब युक्ति मार्ग है। तो ऐसा नहीं प्रमाण द्वारा समझ लेना। पश्चात आराधन समय में नो आराधन समय पक्ष को अनुभव जम्मा, आत्मा प्रत्यक्ष होता है, वहाँ कोई तर्क वितर्क न्याय लगाने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान में हो गया तो उस वक्त कोई युक्ति लगाने की, न्याय करने की, अनुमान करने का, तर्क लगाने का कोई प्रसंग वहाँ
नहीं
है। वहाँ तो आराधन होता है, आराधन समय में तो आराधन होता है, ऐसी बात है। वो बात लिया यहाँ, वो टोडर मंजी की भी चिट्ठी है ना, तो उसने वो बात अपने दिमाग में तो है, तो इधर लिखा है, वही बात लिखा है कि आप भी जब तक निश्चय नहीं से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, निश्चय नहीं से निरूपण की हुई मूल ध्रुव स्वरूप उसको पहचाने नहीं, तब तक व्यवहार मार्ग से उसका निश्चय करे, उसका लक्ष्य करे और पहचान करे। वो ऐसी बात है कि आत्मा का एकत्व हो रहा है राग से और परद्रव्य से, राग में भी ज्ञान नहीं, परद्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, तो उसको भिन्न पहचानने के लिए ज्ञान लक्षण से ही उसकी भिन्नता मालूम पड़ेगी, उसके सिवा भिन्नता मालूम नहीं पड़ेगी। जैसे एक कमरे में 150 आदमी हैं, कोई अनजाना आदमी किसी को पूछता है फलाना को मिलना है, तो उसका उसको कोई देंगे कि भाई वो उसका एड्रेस कैसा है, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, कुछ न कुछ की जो विशेषताएं हैं वो वो बताएंगे। उसमें वो अलग छंटेगा कि ऐसा आदमी कौन है, उसको पूछेगा आप तो फलाना नहीं, इतनी उम्र का होगा, उम्र कोई ना कोई उसकी विशेषताएं बताएंगे। ऐसे आत्मा को पहचानने के लिए उसकी विशेषता, खास विशेषता क्या है कि ज्ञान है वो उसकी खास खास विशेषता है, ज्ञान ही उसकी खास विशेषता है, यहाँ से वो अलग पहचानने में आता है। तो ज्ञान है सो आत्मा है, ऐसा व्यवहार नहीं से भेद तो आएगा आएगा और आएगा। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, अनजाने पदार्थ को जानने के लिए पहचानने के लिए उसका कुछ न कुछ भेद को मुख्य किए बिना वो अभेद को पहचान सकेगा नहीं, और पहचानने में आएगा वो अभेद स्वरूप आएगा। पहचानने में भेद आता
नहीं है,
नहीं, फिर पहचान हो गई तो अभेद की पहचान हो गई, भेद से वो गौण हो गया, विलीन हो गया। फिर इसलिए निचली मैंने मुमुक्षु की दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। वो ठीक प्रकार मैंने अभेद ज्ञान उसका हुए, अभेद पहचान हुए, तब तो भेद से जाना वो कार्यकारी हो, वरना कोई कार्यकारी पना है नहीं। पहचानने में क्या होती है, खोज होती है, चिंतन मनन में एक रटन होता है। तो जैसा ओक संज्ञा से जान लिया उसका रटन कर ले, जैसे कि जान लिया कि आत्मा तो नायक है, या आत्मा ध्रुव अपरिणामी है, कुटस्थ है, या आत्मा आनंद स्वरूप है, कोई भी, तो उसका चिंतन करते रहे कि मैं ऐसा। वो चिंतन मनन का विषय हो गया। और ज्ञान में अपना अस्तित्व भाषित हुए, ज्ञान ज्ञान में अपना अस्तित्व भाषित हो गए, ऐसी खोज चले कि मेरा अहमपना कहाँ हो रहा है, राग में, शरीर में, देह में, या ज्ञान में। तो पहले तो भूल हो रही है, वो भूल मिटेगी दिखने में आएगी तो, और फिर जहाँ है वहां मालूम पड़ेगा, तो पहचान होगी, निश्चय होगा कि ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस तरह से हाँ अंतर्वलोकन से ही पता चलता है, चिंतन मनन से नहीं, अवलोकन से ही पता चलता है। ज्ञान स्वयं का अवलोकन करता है तो उसको अनुभव रूप वेदन रूप ज्ञान है, उससे पूरा आत्मा समझ में आता है। लक्षण एक गुण का, लेकिन एक गुण को अनंत गुण का रूप होने से पूरा अनंत गुणात्मक आत्मा है उसकी पहचान हो जाती है, ऐसी बात है। दूसरा रास्ता ले लेता है, जो रास्ता लेना चाहिए वो रास्ता नहीं लेता है, जो उपाय करना चाहिए वो उपाय नहीं करता है, पर कोई दूसरा ही उपाय कर लेता है तो दूसरा उपाय से तो काम होने वाला
नहीं है।
लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सुखदाय, जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं खाए। लक्ष्य थवाने तेहनो, लक्ष्य कहो, निश्चय कहो, पहचान कहो, शास्त्र स्वाध्याय इसके लिए है, इसलिए शास्त्र कहाँ है। और शास्त्र का हम इस तरह से उपयोग नहीं करे तो धारणा करे, चिंतन करे, मनन करे जा, बहुत काल किया लेकिन दूसरा किया, जो करने योग्य था वो
नहीं किया।
अब भी वक्त समय तो है, चलो गया सो गया, गया इसकी चिंता नहीं। अब तो वक्त है कि समय है कि नहीं है अपने पास, कि वक्त है अभी खुद चलाओ अंदर में। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझ करके तो कार्यकारी होगा, समझेगा तो, पहचान करेगा तो उसको कार्यकारी कहा, वरना पहचान नहीं हो तो उसका कोई कार्यकारीपना
नहीं है।
तो अपने यहाँ वो चर्चा चलती है, समय सार में तो लक्षण लक्षण का चर्चा छेड़ा है, खुद परिशिष्ट में अमरचंद्र आचार्य महाराज ने वो चर्चा किया है। बात करता है लेकिन जैसा गुरु ने कहा वैसा माना यानी स्वीकार किया बुद्धि से, लेकिन पहचाना नहीं तो भी वो माना नहीं माना एक ही बात हो गई। माना कब के पहचाना तब, ये बात है। ज्ञान लक्षण है, हम जानते हैं और मानते हैं, और लक्षण का संबंध तो लक्ष्य के साथ है। लक्षण को जाना और लक्ष्य को पहचाना के नहीं पहचाना, कि नहीं पहचाना तो फिर लक्षण किसका, लक्ष्य का तो लक्षण है। जब लक्षण का निश्चय हुआ ही नहीं तो फिर लक्षण किसका रहा, तो कहने मात्र रहा। तो ये बात कहने मात्र नहीं है, कहने मात्र वो बात नहीं है, उसका उपयोग करने की बात है, परिणमन करने की बात है, ऐसा लेना।
दूसरे लोग ज्ञान लक्षण को भी नहीं मानते हैं, हम तो मानते हैं। दूसरे लोग ज्ञान लक्षण को नहीं स्वीकारते हैं, हम स्वीकारते हैं।
ठीक बात है, स्वीकारते हैं, फिर उसका कोई चरितार्थपना है, स्वीकार किया वो चरितार्थ हुआ कि वैसे ही स्वीकार कल्पना में रह गया, वो वास्तविक स्वीकार नहीं है, काल्पनिक स्वीकार है। ये ओग संज्ञा से स्वीकार है, प्रयोग से परिणमन से स्वीकार नहीं है। तो ऐसा स्वीकार में भी हमें धोखा खाना नहीं है, इसमें धोखे में रह जाएंगे। हम तो स्वीकारते हैं, गुरु ने कहा ऐसा ही स्वीकारते हैं, करते हैं तो लक्ष्य की पहचान आनी ही चाहिए। कभी बनिया ब्राह्मीण ऐसा सोचता है कि हम ढेर भंगी चमार से तो अच्छे हैं, है? ऐसी चर्चा करते हैं घर में कभी?
नहीं करते।
आपस में करते हैं कि हम रेड़ बंगी चमार से तो अच्छे हैं, वहां नहीं करते हैं, यहाँ को क्यों करते हैं? नीचे वाले से तो हम अच्छे हैं, ऐसा मानने वाला अभिमान करता है। क्या
अभिमान करता है?
हम अच्छा है ऐसा अभिमान करता है, तो वास्तव में वो अभिमानी अच्छा रहता नहीं है। अभिमानी है और अच्छा है, वो बात साथ में है क्या कि नहीं है? उसको तो अभिमान हुआ, अच्छापन कहाँ रहा? अभिमान तो दुर्गुण है,
दुर्गुण,
वो कोई सद्गुण नहीं है। जो आत्मार्थी होता है, सच्चा मुमुक्षु होता है, उसको तो ये भाव आता है कि कितने भी गुण हमारे में प्रकट हो गए, कितनी भी मुमुक्षुता वर्धमान हो जाए, हम कितने भी आगे बढ़े, हमको इसका कहीं भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और हमें जागृत रहना चाहिए कि कहीं हमें अभिमान तो नहीं हो जाता है ना, इतना वो सतर्क होता है। जागृत होता है उसको मुमुक्षुता वर्धमान होती है, वरना तो अहम भाव पर्याय दृष्टि में आए बिना रहेगा नहीं। जो जागृति नहीं होती तो पर्याय बुद्धि तो है ही, द्रव्य दृष्टि नहीं हुई वहां तक तो पर्याय दृष्टि है, अहम भाव कैसे त्याग करेगा, अहम भाव छोड़ेगा कैसे। जागृति एक ही साधन है। परंतु यदि निश्चयवृत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। क्या भेद नहीं है आत्मा में, लड़ाई करें बाद विवाद करें, आत्मा में गुण भेद नहीं है, आत्मा में पर्याय भेद नहीं है क्या, आत्मा में अनेक धर्म नहीं है, लक्ष्य लक्षण का भेद नहीं हुआ, ये सब भेद भेद को मिटाने के लिए है, भेद भेद को मिटाने के लिए, भेद 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 को रखने के लिए नहीं है। तो दृष्टांत भी दिया है टोडरमल जी ने कि कोई हीरे का हार नेकलेस खरीदने को जाता है बहुत कीमती, तो उस वक्त कितनी प्रकार से परीक्षा करते हैं पहचान करने के लिए कि उतनी कीमत है कि नहीं है। 10 लाख का हार बोला तो 10 लाख है, इसका लगता है कि होता है कि नहीं होता है। उस वक्त सभी प्रकार के जांच तलाश करे, तर्क वितर्क करे, अनुमान करे, परीक्षा करे, सब कुछ करे, लेकिन खरीद करके जब पहना तब तब परीक्षा का उस वक्त के परिणाम रहेंगे क्या,
नहीं रहेंगे
कि नहीं रहने रहेंगे, और रहना भी चाहिए
नहीं
नहीं, नहीं रहना चाहिए,
पहनने का आनंद नहीं आता
तो खरा आनंद चला जाएगा, इसका विकल्प करने को जाएगा तो आनंद चला जाएगा। तो खरीदने का मतलब क्या था, आनंद लेने का तो मतलब था, आनंद ही नहीं आएगा। अच्छा नहीं, त्या दृष्टांत लीधू से हमने, क्या दृष्टांत लीधू से टोडर मल जी, क्या दृष्टांत लीधू से बराबर। फिर भी कोई करता है वहां और आनंद को नहीं भोगता है तो उसको क्या कहेंगे, पागल है, वही बात को रटन करता है। अभी वो बात क्या रटन करने का क्या जरूरत है, तो उसको आनंद आएगा
नहीं।
इसलिए निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे, क्योंकि श्रद्धान में तो भेद पड़ता नहीं, श्रद्धा खुद ही अभेद परिणामी है, वो भेद कर ही नहीं सकती। भेद तो ज्ञान में आता है, भेद भी ज्ञान में आता है, अभेद भी ज्ञान में आता है। श्रद्धा का विषय कौन होगा, अभेद होगा, क्योंकि श्रद्धा तो भेद कर ही नहीं सकती। ज्ञान जान सकता है भेद को, लेकिन श्रद्धा के साथ अभेद ज्ञान का मेल है, भेद भेद वाले ज्ञान का मेल श्रद्धा के साथ
नहीं है,
है ही नहीं। तो तुमको सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो किसी को मुख्य करेगा, भेद को या अभेद को, अभेद को मुख्य करना होगा। तो ऐसा कोई भेद का श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए, वो श्रद्धा ने मिथ्या हो गया। यही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और एक दूसरा ये अभी तत्वार्थ सार दूसरा लिखा। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति अभूतार्थम व्यवहारमेव केवलम एवैति यस्तस्य देशनाता नास्ति। दोनों संस्कृत में है। माणवक एव सिंहो यथा दृष्टांत दिया है, भवती अनवगित अवगित सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम याति अनिश्चय अज्ञस्य। अर्थ, मुनिराज अज्ञानी को अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार नहीं उसका उपदेश देते हैं। अज्ञानी को भेद में खड़ा है, अज्ञानी कहाँ खड़ा है?
भेद में खड़ा है।
भेद का ज्ञान उसके पास नहीं है, भेद में खड़ा है तो उसको भेद से समझाएंगे। जो केवल व्यवहारिक व्यवहार को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। बहुत कड़क बात लिख दी है। क्या आबज बहु जिज्ञासा गुरु खाली से आबज जो भेद को ही जो पकड़ लेता है, क्या जो भेद को पकड़ लेता है अकेला और अभेद को समझता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है, उपदेश के लायक नहीं है, ऐसा बोल दिया। उसको उपदेश ही नहीं देना। क्या व्यवहार नहीं के विषय की जो बहुत ज्यादा पकड़ करता है, उपदेश में तो दो ही बात आएगी, निश्चय व्यवहार दोनों की बात आएगी। उसमें जो अवलंबन लेने योग्य ऐसा जो निश्चय स्वरूप, उसका अवलंबन नहीं लेकर के व्यवहार की पकड़ करता है, कोई प्रमाण की करता है, कोई पर्याय की करता है, कोई गुण भेद की करता है, ये सब व्यवहार का विषय उपदेश के लायक नहीं है। जा क्या कह दिया आचार्य महाराज ने कि उपदेश का लायक ही नहीं है, उसको उपदेश ही मत देना। ठीक, निकाल दिया। उपदेश सुनने की योग्यता में से उसको निकाल दिया कि उपदेश सुनने लायक नहीं रहा। जाओ बोलो, कितना निषेध किया है जोर से। मुनिराज अज्ञानी जन को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार नहीं, कैसा जो व्यवहार नहीं असत्यार्थ है उसका उपदेश देते हैं, क्योंकि उसी ढंग से वो समझता है, इसलिए उसमें से कोई सत्य को नहीं ग्रहण करता है और केवल व्यवहार ही कोई जानता है, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है, उसको उपदेश मत देना। तो ऐसी पकड़ करता है उसको उपदेश मत देना, उसको उपदेश देना ही नहीं है। मुनियों को ना दे दिया है कि तुम उसको उपदेश ही मत देना, छोड़ देना उसको, अपने रास्ते में जाना देना। वो कृपालु देव लिखते हैं ना मुनि की, कोई सानकवासी मुनि की बात ली, क्योंकि ईश्वर उसको परिभ्रमण कराना चाहते हैं, हम उसको क्यों रोके। बहुत मीठी जबान है, सॉफ्ट लैंग्वेज, उसकी योग्यता बहुत खराब है ऐसा नहीं बोला। ईश्वर उसको भटकाना चाहता है तो हमको फिर रोकने की जरूरत नहीं है, हम रोकेंगे तो रुकेगा नहीं, ईश्वर की चलती है, हमारी थोड़ी चलती है, मतलब इसकी योग्यता है, वो स्वयं ईश्वर है, भटकने के लिए स्वयं ईश्वर है, वो खुद ही भटकना चाहता है, उसको कौन रोकेगा, वो अपने मानेगा
नहीं।
सच्ची बात करेंगे तो दो बात और उल्टी निकालेगा उसमें से, सच्ची कहेंगे तो और दो बात उल्टी निकालेगा, तो उसके पीछे कोई परिश्रम लेने की आवश्यकता
नहीं,
उसको छोड़ देना, वो उपदेश के योग्य नहीं है। इसमें से वो निकलता है कि ज्ञानी या गुरु जैसे तैसे को उपदेश देते नहीं है, योग्यता देखकर उपदेश देंगे, किसकी योग्यता है तो उसका उपदेश दो। व्यवहार के पकड़ करने वाला है छोड़ो उसको, उसके साथ उपदेश का कोई व्यवहार रखने की जरूरत नहीं है। मुमुक्षु का तो कोई क्लास ही नहीं है। क्या मुमुक्षु का कोई अधिकारीपना तो है नहीं, क्यों दूसरे को समझाएं? खुद को समझना बाकी है तो दूसरे को समझाने को क्यों जाए? इसलिए कृपालु देव ने एक मार्गदर्शन अच्छा दिया है कि फिर भी किसी को वांछन आदि करने का उपदेश का स्थान में बैठने का उदय होवे और वो मुमुक्षु मंडल में या मित्रों में कहे आप हमको समझाइए, ऐसा भी उदय होता है तो उसको क्या करना है। तो उसको सत्पुरुष को गुणग्राम करना, सत्पुरुष प्रति भक्ति बढ़े ऐसी बात करना, उसका अवर्णवाद मिटे ऐसी बात करना, उसकी गुण प्रशंसा करना, ऐसा लिया है। दूसरा उपदेश मत देना, क्योंकि दूसरा तो अपने को ग्रहण करने का बाकी है। इसलिए
सत्संग चलता है, आप आओ पधारो, ऐसा ही बोलना। सत्संग यहाँ चलता है, हमें ऐसा मुमुक्षु को हम बोल सकते हैं क्या? आओ
अपना कल्याण करना का भाव हो तो ऐसा। यदि आप अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो आत्म कल्याण की चर्चा चलती है हमारे यहाँ। क्या हमारे जो सत्संग चलता है वहाँ जीव का अकल्याण कैसा होता है, कल्याण कैसे होता है, इसकी चर्चा चलती है। तुमको भी आत्म कल्याण करने का कोई भाव हो, भावना हो तो आइएगा। इससे ज्यादा परिश्रम लेना
नहीं है।
तृषातुर को पानी पिलाना है और जो तृषातुर नहीं है उसको पानी नहीं पिलाना। तो क्या करना कि उसको तृषा लगे ऐसी कोई बात करना, बस इससे ज्यादा बात करना
नहीं,
वरना और ही अड़ जाएगा। क्या होता है, अड़ जाता है, अड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा, हमको नहीं आना है, हम नहीं आएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। सब बात किया है, बहुत बात किया है।
क्या करना, क्या नहीं?
भूले नहीं, ऐसी बहुत बातें किया है, वरना जगह जगह भूलता है। क्या है कि मुमुक्षु जी भी थोड़ा समझता है तो उपदेश ज्यादा देने लग जाता है। समझता है थोड़ा पर उपदेश खुद गुरु के स्थान में आ जाता है, आचार्य बन जाता है। ये तो आत्म को नुकसान का कारण है, वो कोई लाभ का कारण
नहीं है।
नहीं है मुख्य कारण यही है। जीव को संसार परिभ्रमण के अनेक कारणों में से ऐसा आचार्यपना करना वही संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण है। दूसरे कारण गौण है, गृहस्थी गौण है, ठीक है, व्यापार धंधा गौण है, आचार्यपना करना वही मुश्किल है, बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। वो कृपालु देव ने लिया है, वो बात वो लिया है, दिया है। प्रश्न चर्चा में वो बात सुन ली। तो दृष्टांत से समझाते उसी बात को, जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलावी सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसको व्यवहारिक निश्चयपणे को प्राप्त होता है। वो दृष्टांत देते हैं, सिंह मैंने बाघ ले लेना, बिलाव मैंने बिल्ली, बाघ को भी चटापटा होता है, बिल्ली को भी चटापटा होता है। तो कहता है कि बिलाव ही सिंह है, बिलाव जैसा सिंह ऐसा कोई मान ले, सच्चे सिंह उन्हीं को बाघ को नहीं पहचाने, उसको दृष्टांत से बताओ कि देखो ऐसा होता है, तो उसको ही बाघ सिंह मान ले तो ऐसा हो गया। जो व्यवहार को सही ढंग से नहीं समझते हैं, वो व्यवहार को व्यवहार के स्थान में नहीं रख करके उसको लक्ष्य बना करके निश्चय का स्थान दे देता है, तो बिल्ली को बाघ मान लेता है, ऐसे बात है। उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त हो जाता है, करते करते हो जाएगा, वो ही बात है। व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, वो बिल्ली को बाघ मानने की बात है, या व्यवहार को निश्चय रूप में अंगीकार कर लिया। रक्षाबंधन का इतिहास हमारे जैन इतिहास में पुराण में वैसा है कि वो 700 मुनियों की रक्षा की थी। वैसा 700 मुनि पर कोई उपसर्ग आया था, कोई राजा ने उसको जला देने का, कोई अन्य मत के राजा होंगे विरोधी, बलि नाम नो मंत्री है, तो बलि उसने 700 मुनि को उपसर्ग दिया ने, तो हाँ तो वो कोई चमत्कार दिखाया है, और वो बहुत महान आत्मा है, तो मांगो तुम जो मानना, तो 8 दिन के लिए मुझे रात दे देना, ऐसा करके। तो फिर के क्या चाहिए, तो हम तो को 3 हाथ जमीन चाहिए, गए विष्णु कुमार मुनि जिसने बचाया। तो फिर उतना बड़ा अपना शरीर बना दिया कि उसका सारा जो है वो कोई उपसर्ग नहीं हो गए, ऐसा जमीन उस जमीन में मुनि राज मुनि सब आ गए, तो उसमें तो कुछ कर सकता नहीं था, तो बच गए। तो उसकी रक्षा किया विष्णु कुमार मुनि ने, 700 मुनियों की रक्षा की। वहां से रक्षाबंधन का त्योहार हमारे यहाँ चलता है।
बलि मंत्री भी सीधा आ गया
है,
नमस्कार, बलि मंत्री ने भी नमस्कार किया।
हाँ, फिर वो तो चमत्कार होते ही इससे बदल जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, और मुनिराज है तो फिर मुनि दशा में आ जाते हैं, बाद में मुनि दशा में आ जाते हैं। ऐसा कभी करते हैं तो च्युत हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी च्युत होते हैं, शासन की प्रभावना के हेतु से करते हैं, तो थोड़ा बहुत मचक आ जाता है, फिर फौरन ही वो मुनि दशा में आ जाते हैं। तो यहाँ से रक्षाबंधन का त्यौहार है, फिर वो अपने यहाँ से बांधने लगते हैं। तो हिंदू में तो वात्सल्य का दिन है, ऐसा लेना, क्या लेना, आठ अंग में वात्सल्य अंग है, तो वात्सल्य का उसमें उपदेश लेना है। वात्सल्य का उपदेश लेना मतलब क्या, कि जो भी मुमुक्षु है उसके प्रति प्रेम रखना, द्वेष करना
नहीं,
मुमुक्षु में आपस में द्वेष भाव होना
नहीं चाहिए,
आपस में वात्सल्य और प्रेम रहना चाहिए, उतना उपदेश आज के दिन से लेना है। कुछ भी बना हो, कुछ कोई ने किसी ने कुछ भी बोल दिया हो, कह दिया हो, बात खत्म, अपने को तो प्रेम रखना है, अपने को पकड़ रखना
नहीं है,
बस ऐसा इस दिन का महत्व लेना है तो वैसा ले लेना है। ये थोड़ा रक्षाबंधन वाला है। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष, क्या विशेषण लगाया,
निर्विचारी
उल्टा लेता है ना, व्यवहार कोई निश्चय ग्रहण रूप में ग्रहण कर लेता है तो निर्विचारी है, उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ और हे कहते हो, तो मृतशील संवादिक व्यवहार कार्य किस लिए करें, सब छोड़ देंगे। चलो आपने उसको अकार्यकारी बताया ना, तो हमने जो व्रतादि ग्रहण किया है ये छोड़ दिया, जाओ। तो आप कहते हैं इसलिए हमने ऐसा कर लिया, उसको सामान्य बुद्धि भी नहीं है, वो तो शुभ छोड़कर अशुभ में चला गया, तो उसको तो निर्विचार पड़ा, उसको तो आत्म कल्याण का कोई विचार नहीं है। उससे कहते हैं, ऐसे कहने वाले से कहते हैं कि कुछ व्रत शील संयमादिक का नाम तो व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, क्या उसे छोड़ दे, व्रतशील संयम को व्यवहार कहते ही नहीं हम तो, उसको कोई निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं मानना, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग मानता है, उसको निश्चय मानना वो छोड़ाने की बात हम करते हैं, हम वृत्तिल संयम को नहीं छोड़ाते हैं, उसमें जो मोक्ष मार्ग की मान्यता है उसको छोड़ाते हैं। तुम गलत समझे हो हमारी बात, तुम यथार्थ समझे नहीं हो। और ऐसा श्रद्धान कर के इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित है। श्रद्धान ऐसा कर कि उसको सहकारी कारण सहचार में जान करके उपचार से उसको मोक्ष मार्ग बोला है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये परद्रव्याश्रित है। निश्चय स्वद्रव्य आश्रित होता है और व्यवहार परद्रव्य आश्रित होता है, इसकी परिभाषा ही ऐसे लिया है शास्त्र में, स्वाश्रित हो निश्चय पराश्रित हो व्यवहार, ऐसा सूत्र है उसका। ये तो परद्रव्य आश्रित है। तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वितराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो वितराग भाव स्वरूप है, वो राग स्वरूप तो है ही नहीं। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ ही जानना, व्रतादि को छोड़ने से तो व्यवहार का ही पणा होता नहीं है, इस तरह से व्यवहार का ही पणा नहीं कहा है उसकी श्रद्धा छोड़ देना मोक्ष मार्ग है, ऐसी श्रद्धा छोड़ देना तो व्यवहार के परिणाम आएंगे, व्रतशील संयम के परिणाम आएंगे, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना उस वक्त भी। तो जान करके फिर करो तो उसमें कोई अभिमान होने वाला नहीं है और कर्ता भाव होने वाला नहीं है। फिर हम पूछते हैं कि व्रत आदि को छोड़कर तुम क्या करेगा, वो निर्विचारी पुरुष को हम पूछते हैं कि व्रत आदि को छोड़ करके क्या करेगा, फिर यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। हिंसा का तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी अशुभ उपयोग को नहीं लगता है, शुभ परिणाम को लगता है, वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा, यहाँ प्रवर्तने से तो कोई भला होने वाला नहीं है, उसमें तो बड़ी मलिनता है। नरकादि को प्राप्त करेगा, भला तो नहीं होगा, नरकादि को प्राप्त करेगा, इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपणा है, वो तो अविचारीपणा है। तथा व्रतादिक परिणति को मिटाकर केवल वितराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है। तो वितराग परिणति व्रतादि का परिणाम करना के नहीं करना, के करके मिटाना, क्या करके मिटाना, करना क्यों, अशुभ से बचने के लिए, मिटाना क्यों, वितराग भाव प्राप्त करने के लिए, ये बात है। अशुभ से छूटकर शुभ में आकर उससे छूटकर वितराग भाव में आना, उदासीन भाव मैंने वितराग उदासीन भाव लिया, वो बाह्य वैराग वाला शुभ भाव
नहीं।
वो निचली दशा में हो नहीं सकता, निचली दशा में जो अशुभ में पड़ा है उससे तो ऐसा भाव वितराग भाव आ नहीं सकता, इसलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। ऐसा साधन छोड़ करके या शुभ भाव को छोड़ करके अशुभ में चले जाना वो बात तो है नहीं, शुभ छोड़ करके वितरागता में चले जाओ, लेकिन वो सीधा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अशुभ उपयोग में से सीधा शुद्ध उपयोग नहीं होता, बीच में शुभ उपयोग आए बिना रहता नहीं। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय की प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, इस प्रकार श्रद्धान में, क्या श्रद्धान की बात चलती है मुख्यतः, श्रद्धान में निश्चय को प्रवृत्ति में व्यवहार को ऐसा उपादेय मानना यह भी मिथ्या भाव है, इस प्रकार नहीं है। प्रवृत्ति तो हम यही करेंगे, श्रद्धान निश्चय का रखेंगे, लेकिन प्रवृत्ति की मान्यता क्या है तेरी वो बताओ, ये करते करते हो जाएगा तो ये निश्चय तेरे पास वही निश्चय हो गया, वो पता खुद को उसकी भूल का पता लगता नहीं है। यहाँ तक
शुभ भी जो होता है, शुभ भी जो करता है वो अशुभ से बचने के लिए नहीं, मतलब शुद्ध के लिए।
हाँ हाँ ठीक है, लक्ष्मी शुद्धता हो तो शुभ वैसे सहज ही हो जाएगा, तो अपने स्थान में ठीक है।
देवादिदेव सिद्ध मंदर भगवान।
जय हो परम कृपालु श्री कान्हु देवनो श्री विक्रम दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।